ओम शांति। तो आज हमारे सामने रामनाथ भाई जी हैं, जिन्हें योग के विषय में गहरी रुचि है। 27 वर्षों से आप ईश्वरीय सेवाओं में अपना संपूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं। रिलीजियस विंग, जो 17 विंग में से एक विंग है, धार्मिक प्रभाग, उसके आप मधुबन कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो आज हम रामनाथ भाई जी से सुनते हैं, जिनका विषय है कि शांति की शक्ति हम कैसे बढ़ाएं। आदरणीय भाई जी।
ओम शांति। इस साल अव्यक्त बाप दादा ने बार बार एक ही जो विषय है, शांति की शक्ति जमा करो, यही अंतिम समय में भी काम में आने वाली है। तो बार बार इसी एक महावाक्य को नवंबर में भी बाबा ने बताया था कि नेगेटिव को पॉजिटिव करना चाहते हो तो शांति की शक्ति अगर है तभी ही नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। तो अभी भी बाबा ने कहा संगम पर ही ये बैंक खुलता है, सारे क्लब में ये बैंक नहीं होता है, बाकी सब प्रकार के बैंक होंगे। तो कौन सा बैंक है ये? शांति की शक्ति जमा करने का जो बैंक है वो सिर्फ संगम पर ही खुलता है। तो इसलिए अभी जितना शांति की शक्ति जमा करना चाहते हो तो शांति की शक्ति को जमा करो। अब प्रश्न आता है शांति की शक्ति क्या चीज है, उसके फायदे क्या है, तो उसकी विधि क्या है कि बाबा ने अभी अभी कहा कि एक है स्वीट साइलेंस और एक है डेड साइलेंस। नील होके बैठना ये हमारा राजयोग नहीं है, नील है, मन को दमन नहीं करना है, मन को कंट्रोल भी नहीं करना है, मन को समझाना है, मन को दिशा देनी है, जहां ले जाना चाहते हो वहां जाने की दिशा मन को देनी है। फिर बाबा ने कहा मन बुद्धि को एकाग्र करो, परम धाम में स्थित करो, क्योंकि मन और बुद्धि स्वच्छ है, क्लीन है, तो ऐसी परिस्थिति आने वाली है। बार बार इस साल बाबा ने कहा अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अभी अभी कहा कि बच्चे अलर्ट रहो। तो इन सब बातों को देखते हुए बाबा ने और भी कहा कि अचानक कभी कुछ भी हो सकता है, उस समय ऐसी परिस्थिति आएंगी तो बाबा बच्चों को टचिंग्स देगा, लेकिन वो टचिंग कैच करने के लिए क्लीन बुद्धि चाहिए, बुद्धि स्वच्छ चाहिए। अगर बुद्धि के अंदर किसी का प्रभाव है, संसार में बहुत सारी बातें हैं, दुख है, समस्या है, बीमारी है, तेरा मेरा बहुत कुछ है, इन सब की स्मृति बुद्धि पर रहती है, इन सब बातों से बुद्धि मुक्त है। जो आज सवेरे भी बाबा ने कहा था मुरली में कि उस स्वयं पर और सर्व पर उपकार कौन कर सकता है, और ये पूंजी जमा करनी है, ये पूंजी भी कौन जमा कर सकता है, जो देही अभिमानी है। अगर देह समझते हो, देह का कितना बड़ा संसार का जाल है, कितनी बातें हैं, तो देह समझते ही सारी स्मृति अपने आप जागृत रहती है। अगर मैं देह नहीं हूं, देह एक साधन है, साधक मैं अलग आत्मा हूं, ये स्मृति तभी रहेंगी जब हम अपने आप को अच्छी तरह से समझ लेंगे। समझना पड़ता है, सिर्फ भावना नहीं, सिर्फ सुनने से, श्रवण से आचरण में नहीं आता है, समझने के, सुनने के बाद। इसलिए बाबा कभी कभी पूछता है सुनने के बाद समझ में आया, सुनते बहुत कुछ है, पढ़ते भी है, लेकिन समझ में तब आता है, सुनने के बाद अपने आप को समझाना पड़ता है, अर्थात बुद्धि के साथ बात करनी है। बाबा ने ये कहा, इसका अर्थ क्या है, उसको आप शब्दों में मनन चिंतन कहते हो।
तो अपने आप से बात करो, ये क्या है, कैसे करना चाहिए, शांति की शक्ति क्या है, देही अभिमानी अवस्था किसको कहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जब सवेरे सुना उसके साथ हमारा सारा दिन में कर्म करते, अपने आप से बात करो, पूछो देही अभिमानी क्या है, देह अभिमान क्या है। देह अभिमान रहता, देह की स्मृति रहती तो क्या क्या विचार आता है। अगर देह की स्मृति नहीं है, आत्मा की स्मृति है, तो आत्मा क्या चीज है, आत्मा का किसके साथ संबंध है, आत्मिक स्मृति में रहने से क्या क्या होता है, किस प्रकार के विचार चलते हैं। तो ये सारा दिन में कर्म करते हुए अगर इसका अभ्यास करते हो, चिंतन करते हो, तो बाबा ने कहा इसकी स्मृति है, वही स्वयं पर और सर्व पर उपकार कर सकता है कि ये आत्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा है। बाप कौन है, बाप का प्रोफेशन क्या है, सुखदाता है, देने वाला है। नहीं आपने दिया तो मैं दूंगा, ऐसा नहीं, निरंतर दाता है। उस दाता के हम बच्चे, हमारे अंदर भी अनादि अविनाशी वही संस्कार है, सिर्फ उसको जागृत रखना है, वो स्मृति रहना चाहिए। वो स्मृति कब आए, कहां आए, वो आत्मा के अंदर है, आत्मा परमधाम में थी। तो यहां आने के बाद शरीर के साथ कर्म करते करते हम अपने आप को शरीर समझने लगे हैं, और आपने किसी को भी आंखें खोल के देखो तो शरीर ही दिखाई देता है, आत्मा चमकती हुई दिखाई नहीं देती है, दिखाई देता तो याद आ जाए, है ना। तो शरीर ही दिखाई देता है, शरीर की स्मृति संबंध, उसका ही प्रभाव बुद्धि में निरंतर आप देखो जागृत रहता है। इसलिए बाबा ने कहा थोड़ा समय निकालो, कम से कम अमृत वेले आधा घंटा, शाम को आधा घंटा बैठ करके शांति की शक्ति जमा करो। अगर सवेरे अभ्यास करते हो, कर्म करते करते जहां समय मिला, तो आप मन की शांति का जो सवेरे अनुभव किया, तो कर्म करते करते उस स्मृति को आप जागृत कर सकते हैं। लेकिन अमृत वेले बैठकर शांति की शक्ति जमा ही नहीं किया है, उसकी विधि भी पता होना चाहिए, कैसे जमा होगा। नहीं तो देखा गया योग में बैठते हैं, निल होके बैठते हैं, देखते ही तो एक सेकंड दो सेकंड रहेगा, धीरे धीरे फिर आंखें बंद हो जाती है, नींद आ जाएंगी, निल हो गया तो नींद आ जाती है, नहीं तो खाली मन शैतान का घर कहा, खाली मन के अंदर कुछ ना कुछ विचार आएगा, बुद्धि भी खाली है, दो शक्तियां है, बुद्धि के अंदर कुछ विचार याद आएगा, स्मृति जागृत होंगी। तो देखा गया जब भी योग में बैठता है तो मन अगर खाली छोड़ते हो तो मन इधर उधर जाएगा या धीरे धीरे नींद आ जाएंगी। बुद्धि को खाली छोड़ते हो, बुद्धि के अंदर बहुत सारी स्मृतियां हैं, वो अपने आप जागृत होती है। जो बाबा कहता है मन और बुद्धि परम धाम में एकाग्र होना चाहिए, तब जो शक्ति मिलती है बाबा के द्वारा, तो उस शक्ति को शांति की शक्ति कहते हैं। वो योग बल ही जिस जितना हम अभ्यास करते हैं तो ये मन और बुद्धि ये दोनों स्वच्छ होती है, इसलिए योग के द्वारा दिव्य बुद्धि प्राप्त होती है। तो ये कैसे होगा, अपने आप होगा। अगर हमको यहां से वहां तक चल जाना है तो चलना पड़ेगा ना, जाने का रास्ता चाहिए, इसलिए हमारा योग स्वीट साइलेंस कहा, चलो लेकिन बिना आवाज के चलो, रुकना नहीं है, निल नहीं है, डेड साइलेंस नहीं है, तो चलना है। योग को यात्रा कहा, यात्रा के अंदर चलना है, लेकिन जब चलते समय मन के अंदर व्यर्थ विचार न जाए, पुराने संस्कार जागृत न हो तो मन बुद्धि को अपने इच्छा के अनुसार कहां ले चलना है उस डायरेक्शन में ले चलना है। तो ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए, नहीं तो एक मन एक चलता है, बुद्धि और कुछ सोचती है, तो ये दोनों शक्तियां सदा विरुद्ध दिशा में जाते हैं। इन दोनों को पहले एक करना चाहिए, एकाग्र करना चाहिए। फिर कहां जोड़ते हो आप, शिव बाबा के ऊपर जोड़ दो तो शक्ति को ग्रहण करेगा। तो इन दोनों शक्तियों को एक कैसे करें, एकाग्रता चाहे दूसरे इधर उधर के विचार न आ जाए, तो उसको काम देना पड़ेगा, दिशा दिखानी पड़ेगी। इसलिए जब भी योग में बैठते हो आप यहां से परमधाम तक प्रश्न पूछते जाओ, बुद्धि जवाब देती जाएगी, बुद्धि साथ देंगी। बाबा ने कहा मन संकल्प करता है, बुद्धि सहयोग देती है। तो मन का प्रश्न अगर मैं कुछ पूछूं तो आप बोलेंगे ना, अगर मैं आपको देखता ही नहीं हूं तो आप इधर उधर देखते रहेंगे। तो इसलिए मन बुद्धि से बात करता है, तो एक सेकंड भी बुद्धि इधर उधर नहीं जाएंगी। अगर इससे बात नहीं करो खाली बुद्धि, किंतु बहुत सारे चिंताएं हैं, तो अपने आप उसका चिंतन करेगा, उधर जाएगा इधर जाएगा, तब आप कहते बुद्धि भटकती है, योग में स्थिर नहीं होती है, योग में बैठे व्यर्थ विचार आते अपने आप नहीं आते, काम नहीं दिया है। तो मन भी ऐसे अपने आप स्थिर नहीं रहेगा, तो मन के अंदर मन का काम है बहना है, विचार उत्पन्न करना है, किसी को देखते ही आवाज सुनाई देते ही उसके अंदर विचार उत्पन्न होंगे, नहीं तो पुराने संस्कार है वो जागृत हो जाते हैं, 10 साल की बात आपको याद आएंगी यहां बैठते ही। इसलिए इन दोनों शक्तियों को दिशा दिखाओ। तो इसलिए मन बुद्धि से प्रश्न करता है, मैं कौन, ये रोज चाहिए, तुरंत बुद्धि जवाब देती है मैं आत्मा हूं। फिर मन प्रश्न करता है मेरा रूप क्या है, मेरे गुण क्या है, सब जानते हो बुद्धि के अंदर ज्ञान है, ज्ञान को जागृत करो, यूज करो। तो ऐसे प्रश्न करते करते परमधाम तक जाओ, शिव बाबा कौन है, बाप से और अपने आप से कंपेयर करो, शिव बाबा कौन है, पवित्रता का सागर है, मांगो नहीं बाबा मुझे पवित्रता की शक्ति दे दो, नहीं, मांगने वाले भक्ति में, अब हम बाप के अधिकारी बच्चे हैं, बाप कौन और मैं कौन, शिव बाबा जो है जैसे ऐसे मैं भी परमधाम में जब था बाबा के साथ था, शिव बाबा जैसा ही मैं था, बाप कौन है, पवित्रता का सागर है ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर पवित्र आत्मा हूं। तो बाबा से बात करो, बाबा जितना आप स्वच्छ है, क्लीन है, प्योर है, सबके प्रति शुभ भावना है, ऐसे मेरे भी हर एक आत्मा के प्रति, चाहे कोई कैसा भी हो, हर एक को मैं भी आत्मिक दृष्टि से देखता हूं, मेरे अंदर भी सबके प्रति शुभ भावना है, पवित्र भावना है। तो ये अपने आप को पूछो, बाप कौन और मैं कौन, कंपेयर करो। ऐसे एक एक शक्ति को आप अपने आप से और बाप से कंपेयर करते हो तो 1 मिनट 2 मिनट आप कहां हो। सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ मन बुद्धि जुड़ी हुई है, उसके साथ वार्तालाप कर रहे हो, लेकिन ज्ञान के बाकी बातों के नहीं, सिर्फ शक्तियों की लेन देन करते हो। जितना समय सर्वशक्तिवान से संबंध है, उसकी सूर्य की किरणें, सर्वशक्तियों की किरणें किसके ऊपर पड़ रही है, जैसे आप यहां बैठे हो तो बहुत शक्तिशाली सूर्य है ऊपर, लेकिन आपको सूर्य की किरणें नहीं लगती है, क्यों, बीच में छत है। ऐसे ही आत्मा शरीर के अंदर है, शिव बाबा शक्ति देता है लेकिन आत्मा को नहीं लगती है। जैसे शरीर को इस हॉल से बाहर लेके जाओ, 5 मिनट धूप में रहो, तो सूर्य की किरणें जब शरीर पर पड़ती है तो क्या होता है, आप चाहो या नहीं चाहो अपने आप पसीना निकालेगा। तो ऐसे सर्वशक्तिवान शिव बाबा के से कनेक्शन जोड़ते हो मन बुद्धि का, तो उसकी शक्ति अपने आप बुद्धि को स्वच्छ करती है। इसलिए कहा शिव बाबा कौन, पतित को पावन करता है, ही इज प्यूरिफायर, लिबरेटर है। आज बाबा ने कहा मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है, मुक्त भी करता है आत्मा को, जो बहुत जन्मों से देह और देह के संबंध के प्रभावित है उस प्रभाव से मुक्त करता है, तो उसके संबंध में जाएंगे तब होगा ना। तो कितना सेकंड, कितना मिनट, कम से कम जब योग में बैठकर अमृत वेले बैठो आधा घंटा, मन बुद्धि को चलाओ परंधाम तक। अगर इसके बीच में, इस यात्रा के बीच में दूसरे कोई भी विचार नहीं आता है, तब कहेंगे आपकी मन बुद्धि एकाग्र है। अगर इसके बुद्धि में बीच में और कोई विचार आता है, आएगा भी, शुरू में विचार आएगा, अरे आज ये काम करना, हाँ करना है, लेकिन अभी नहीं, मुरली क्लास के बाद, योग के बाद 8 बजे करेंगे। संकल्प को दमन नहीं करो। जब संकुच याद आता है उसको किनारा नहीं करो, उसको स्पष्ट करो, हाँ ये काम करना है, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं योग में बैठा हूं, फिर से शुरू करो। तो यहां से वहां तक रास्ता तय होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, तब बाबा कहते हैं एक सेकंड के अंदर परमधाम में पहुंच जाओ। अगर आपने यहां से डाइनिंग इधर का हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल का रास्ता देखा है, तो एक सेकंड में सीधा पहुंच जाते हो। जिसको रास्ता पता ही नहीं तो क्या करेगा, कितना टाइम लगेगा, पूछना पड़ेगा ना, ये कहां है, ये दरवाजा कहां है, ये हॉल कहां है, 10 लोगों को पूछते पूछते जाने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो ऐसे रोज बैठकर यहां से अभ्यास करते हो, कहीं भी रहो आप, अचानक कुछ हुआ तो मन बुद्धि सीधा परम धाम चले जाएगा, इधर उधर भटकेगा नहीं, क्योंकि उसको रास्ता पता है, रोज अभ्यास करता है और शिव बाबा से संबंध रखा है। इसलिए बाबा ने और एक बहुत अच्छी बात बताई इसके लिए ही, कि बाबा ने शिवरात्रि पर बच्चों को एक वरदान दिया है कि बच्चे ये वरदान अमृत वेले उठते ही रोज रिवाइज करो, तो ये वरदान काम करेगा। क्योंकि बाप के बर्थडे है, बर्थडे पर बच्चे आए हैं, बच्चों का भी बर्थडे है, शिवरात्रि माना, तो बाप बच्चों को गिफ्ट देता है। बहुत सुंदर बाबा ने शिवरात्रि पर एक गिफ्ट दिया है, आप सबने पढ़ा होगा, है ना, आप सबके पास होगा भी, और अमृत वेले रिवाइज भी करते होंगे कि भूल गए, याद ही नहीं होगा। तो बाबा ने कहा रोज उस गिफ्ट को देखो, रिवाइज करो, है ना। तो वो क्या, बाबा ने कहा कि हिम्मत का एक कदम और 1000 गुना बाप की मदद। कि इसके बाद बाबा ने जो शब्द कहा था, अचानक कभी भी कुछ हो सकता है, ऐसी परिस्थिति आ रही है, तो उस समय कुछ हो जाए तो आप रास्ते चलते चलते कुछ एक्सीडेंट हो गया, आप गिर गए, तो इसके कारण ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, हम दूसरों पर दोष डालते हैं, तो उसी के चिंतन में रहते हैं, तो व्यर्थ विचार में ही टाइम चला जाता है, उधर बाबा याद नहीं आता है। इसलिए बाबा ने पहले कहा हिम्मत रखो, कुछ भी हो जाए ये मेरे कर्मों का फल, मुझे चुप तो करना है, मुझे सहन करना है, मुझे समाना है, किसी को दोष ही नहीं देना, दोष नहीं देना है। ये पहले से अगर तैयार है, स्मृति में है कि मेरे कर्मों का फल है ये, अचानक पहले से बाबा ने बताया, अचानक और भी कहा, शुरू में बाबा ने बता दिया है ये श्रेष्ठ रास्ते पर जीवन में चल रहे हो आप, श्रेष्ठ मार्ग पर चल रहे हो, तो माया सामना करेंगी, माया हलचल में लाएंगी, पहले से इशारा देता है, पता है ऐसे इस रास्ते पर बहुत कांटे हैं, तो संभाल के देख देख के कदम रखना है। अगर पता नहीं था, हम आंखें बंद कर फटाफट चलते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो कांटे चुभते, पता नहीं था। तो बाबा इन एडवांस पहले से इशारा देता है, बच्चे ये रास्ता ऐसा है, बहुत खड्डे हैं, बहुत पत्थर है, बहुत कांटे हैं, माया सामना करेंगी, बहुत चारों तरफ देख देख के कदम रखो, और बाप को साथ रखते हुए कदम रखो। कुछ हो भी गया, पाव को कांटा लग भी गया, तो बाबा बैठा है, बाप की याद करो, बाबा आपने कहा था मैं मदद करता हूं, चिल्लाओ नहीं, आवाज नहीं करो, धीरे से कांटे को निकालो, देख के कदम रखो, ये हिम्मत, ये अमृत वेले उठ को याद करो रोज। बाबा ने कहा हिम्मत का एक कदम मुझे रखना है, किसी ने कुछ भी किया, कुछ भी बोला, कुछ भी हुआ, सहन करना है, हमारे अंदर इतनी विल पावर है, सिर्फ जागृत रखना है, हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, आत्मा के अंदर अनंत शक्तियां हैं। अगर अचानक कुछ होता है तो थोड़ा सा भी काटा लगता है ना तो बहुत चिल्लाते हैं, आवाज हो जाता है, क्योंकि उसको स्वीकार करने की तैयारी नहीं है। तो इन एडवांस पता है ये सब होने वाला है, बहुत जन्मों के हिसाब किताब है, चुप तू यहां ही करना है। तो अपने आप को ये हिम्मत दिलाओ, ये सब सहन करना है। कभी कोई गाली दे सकता है, गुस्सा कर सकता है, कुछ भी, चलते फिरते स्नान करते करते पाव खिसल सकता है, पाव टूट सकता है, चलते चलते गाड़ी में एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो, हमारे साथ सर्वशक्तिवान शिव बाबा है, हमें कुछ नहीं होगा। हाँ, शरीर अलग है, मिट्टी से बना हुआ है, इसका हिसाब किताब होगा, हम अलग है, शरीर अलग है। और इस अभ्यास के लिए ये रोज अमृत वेले आधा घंटा चाहिए, रोज समय निकाल के आधा घंटा शाम को चाहिए, 24 घंटे के अंदर, बाकी जो चाहे करो, लेकिन रोज ये दो समय सवेरे और शाम कम से कम पहले से समय निकालो। क्यों? सारे कलप के अंदर और सुख और शांति संपन्न जीवन चाहिए। अभी बैंक में कुछ जमा करना पड़ेगा, बिना जमा किए आप कहोगे अपने आप मिलेगा, संसार में ऐसा नियम नहीं है। बाबा कहते हैं हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस चाहिए, अपने आप किसी को नहीं मिलेगा, शिव बाबा अपने आप ततास तो नहीं करेगा। संसार में नियम है, खेती में एक बीज बोना पड़ेगा, एक गेहूं का दाना डालो तो 50-100 दाने लगेंगे, लेकिन एक दाना डालने के बगैर लगेगा संभव है? नहीं, हम डालते नहीं, अपने आप उगेगा। कितना भी पानी डालो, कितना भी खाद डालो, अगर बीज नहीं बोलो तो हो सकता है? नहीं। तो ऐसे ही अगर हेल्थ चाहिए, इस शरीर के द्वारा इस रुद्र यज्ञ की इतनी सेवा करो। तो कहते हैं दधी जी ऋषि ने हड्डी हड्डी स्वाहा किया, यज्ञ में हड्डी डालते हैं क्या? नहीं। तो ब्राह्मण आज आप भी सेवा करने आए हो तो याद रखना, शिव बाबा ने रुद्र यज्ञ रचा हुआ है, इस यज्ञ में हर प्रकार से मुझे सेवा करनी है, तन लगाना है, तो ये तन निरोगी काया हो जाएगा। और मन है, मन व्यर्थ विचारों में इसके उसके तेरा मेरा में लगाओ, कोई कुछ देने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। देखा हमने आधा कलप पूजा करके, पाठ करके, व्रत करके, जप करके, सब कुछ करके देखा, सिर्फ कर्म करते करते जो बाबा ने सवेरे मुरली सुनाई, खाना दिया, उसका चिंतन करते करते कर्म करो। कोई सामने आया उसको मुरली के पॉइंट सुनाओ, तो मन ज्ञान का चिंतन करे, बाबा के याद में रहे, तो मन स्वच्छ निर्मल रहेगा। तो ये बीज बोया, इसका फल स्वरूप सारे कलप बाबा गारंटी देता है, 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस गारंटी है। तो सारा दिन कर्म करते पूछो, मन किसका चिंतन कर रहा है, कहां लग रहा है, क्या करता है, कौन कुछ देने वाला है? अगर इनके लिए उनके लिए चिंतन करो, कुछ मिलने वाला है? और भी पतित होता जाता है। तो ये समझ करके अपने आप को लगाना पड़ेगा, अपने आप नहीं लगेगा। मन के अंदर बहुत जन्मों की आदत बनी है देह का चिंतन करना, देहधारी को याद करना, इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर एक सिस्टम बनाए हैं। सवेरे उठते ही पहले योग करो, स्नान करो, स्वच्छ करो, फिर उसके अंदर ज्ञान सुनाता है बाबा मुरली। कहीं भी आश्रम में जाओ, रोज ऐसा नहीं होता है, यहां रोज सवेरे से अलग अलग प्रकार से बाबा ज्ञान के पॉइंट्स देता है। एक पॉइंट जो अच्छा लगा नोट करके जेब में रख दो, कर्म करते करते भूल जाते हैं, आदत नहीं है, तो बार बार निकाल के पढ़ो, आज बाबा ने क्या कहा था। ज्ञान बुद्धि के अंदर जागृत रहना चाहिए, सामने कोई मिला उसको सुनाओ, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, तब बाबा ने कहा पुण्य जमा होगा। मुक्ति बाबा के बच्चे बनने के बाद भी, दोनों बाबा के बच्चे हैं, दोनों ज्ञान सुनते हैं, योग भी करते हैं, कोई मुक्ति में जाएगा, कोई जीवन मुक्ति में जाएगा। अगर ज्ञान सुन करके आप औरों की सेवा नहीं किया तो जमा क्या किया, सुना और खत्म कर दिया, तो औरों को सुना के औरों की सेवा करके जमा नहीं किया, जाते समय खाली हाथ जाएंगे तो जीवन मुक्ति में आएंगे, मुक्ति में चले जाना पड़ेगा। तो बाबा का बनने के बाद भी जमा करना है, तन के द्वारा करो, मन के द्वारा करो। धन हमारा नहीं है, ऐसे इधर उधर गवाते हो, इधर ये चीज लिया वो चीज लिया, सारा दिन बिजनेस करने यहां आए, मार्केट में गए ये लिया वो लिया, क्या करेंगे? यहां तो आए हैं आत्मा की कमाई करने के लिए। 24 बाकी संसार में सारा दिन संसार के खेल चलता है, लेना देना, कम से कम यहां आने के बाद सिर्फ अविनाशी कमाई के तरफ ही ध्यान देना चाहिए। कहते हैं कहां जा रहे हो, कुछ परचेज करने जा रहे, मार्केट देखने जा रहे? नहीं, बाबा से मिलने जा रहे। तो उसकी निशानी, उसकी चलन कुछ दिखाई देना चाहिए ना। यहां आने के बाद भी वही संसार की बातें करते रहेंगे, इधर उधर की बातें करते रहेंगे, तो फायदा क्या? संसार और यहां में कोई अंतर है? नहीं तो संसार में भी सेवा करते हो, समाज की सेवा करते हैं, तो यहां किसकी सेवा करने है? तो सारे एक साल के लिए, साल एक साल में एक दफा आते हो तो इतनी कमाई जमा करनी चाहिए, मुंह को पट्टी लगनी चाहिए। डाइनिंग टेबल पर जाओ तो मुंह खुलना है। तो यहां सिर्फ मन का काम है, मन के अंदर जो ज्ञान सुना है उसी का चिंतन चलना चाहिए। संसार में सब्जी लाना है, रोटी बनाना है, ये करना है, यहां तो कुछ करना नहीं है। कम से कम एक हफ्ता कोशिश करो, मन के अंदर ज्ञान का चिंतन चल सकता है। सवेरे मुरली जो सुनी तो इसे और कोई चिंता नहीं है। अगर यहां से आदत डालेंगे वहां जाने के बाद भी, तो ये जो अनुभव किया वो अनुभव खींचता है कि नहीं, मधुबन में जाके जो किया था ऐसे करना चाहिए। और यहां समय मिलता है, सवेरे आओ, ऐसे शाम को समय निकालो, समय निकाल आधा घंटा कम से कम विधि पूर्वक बैठो, मन बुद्धि परम धाम तक जानी चाहिए। और वो शक्ति तो जमा करते हो, वो शक्ति ऐसे अचानक जब परिस्थिति आएंगी कौन आएगा, कौन शक्ति देगा, कौन सहारा देगा, कौन किसी को पूछने वाला नहीं है। आपके पास जो शक्ति है वही ऐसे समय पर, ऐसी जब मुसीबत आएंगी तो वो शक्ति काम में आएंगी। तब कितना भी चिल्लाओ कोई आने वाला नहीं, कोई इधर उधर देखेगा नहीं, किसी को किसी के प्रति चिंता नहीं है, स्वयं को स्वयं की कमाई जमा करनी है। तब बाबा ने कहा स्वयं पर उपकार करो और सर्व पर उपकार भी करो, सिर्फ औरों पर नहीं। पहले शब्द है स्वयं पर उपकार करो, स्वयं के लिए सोचो मुझे क्या करना है, मुझे चिंतन करना है, मेरे मन में क्या चलता है, स्वयं को देखते रहो। और जो भी सेवा करते हो आप और किसी के लिए नहीं करते हो, आप कहीं मैं सेवा इनके लिए कर रहा हूं इनके लिए कर रहा हूं, किसी के लिए नहीं करते हो, जो करते हो अपने लिए करते हो, जितना करते हो अपने लिए कर रहे हो। आप कहेंगे मैं शिव बाबा की से मदद करता हूं, नहीं, बाबा को आपने तो दूसरा है, वो स्वयं समर्थ है, एक सेकंड में जो चाहे कर सकता है, लेकिन बच्चों का भाग्य बनाना चाहता है, तब नाम है भाग्य विधाता है। बच्चों को भाग्य बनाने का एक चांस देता है, बच्चे कुछ करो, ये तन निरोगी काया बनना चाहिए, तन भगवान की सेवा में लगाओ, चांस देता है। जो कर सकते हो जितना कर सकते हो, बुद्धि में याद रखो हम शुभ बाबा की यज्ञ की सेवा कर रहे हैं। तब बाबा ने कहा मुझे याद कर मेरे श्रीमत के अनुसार, आज एक शब्द ऐड किया था, स्वयं का और सर्व का, सर्व पर उपकार कैसे करना है, मनमत से नहीं, एक शब्द यूज किया बाबा ने श्रीमत के अनुसार, जरूरी है मेरे मनमत से नहीं, श्रीमत के अनुसार स्व पर और सर्व पर उपकार करने से भविष्य के लिए पुंज जमा होती है। और कौन जमा कर सकता है, जो देही अभिमानी है तब जमा कर सकते हो, नहीं तो शुभ भावना उपकार करने की भावना आती नहीं है। कभी हम समझेंगे कहेंगे दूसरों को दिखाने के लिए उन्होंने कहा इसलिए मैं सेवा कर रहा हूं, नहीं, किसी के लिए नहीं है, किसी को जरूरत नहीं है। जो हम कर रहे हमारा भाग्य बना रहे हैं, हमारा तकदीर बना रहे हैं। मुरली भी सुनते हैं हम, हमारे लिए सुनते हैं, हमारा खजाना जमा करने, सारे कलब के लिए जमा करने के लिए। इसलिए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस अपने आप नहीं मिलेगा। आज संसार में इन तीनों का इम्बैलेंस है। किसी का शरीर बहुत सुंदर है लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है। किसी के पास बहुत धन है लेकिन तन सदा बीमार है, कुछ खा ही नहीं सकते हैं। किसी के पास तन भी बहुत अच्छा है, धन भी है, लेकिन दिमाग ठीक नहीं है। इसका नाम कलयुग है, इम्बैलेंस है। तो जिसको ये तीनों प्राप्तियां बैलेंस समान हो, बहुत धन संपन्न है, मन भी स्वच्छ निर्मल है और तन भी निरोगी है, इसका नाम है स्वर्ग। और वो अपने आप हरेक को नहीं मिलेगा, ऐसी पूंजी अभी जमा करना पड़ेगा, विधि है। जितना अभी हम आप करते हैं उतना मिलेगा। 24 घंटे के अंदर कितना मिनट, कितना घंटे तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगाते, दुनिया सेवा में लगाते जरूर, मनुष्य के सेवा में लगाते हैं, तो मनुष्य क्या देगा, उसके पास क्या है, एक का एक गुना देगा, देगा जरूर, एक का एक गुना देगा। सिर्फ भगवान ने कहा है अगर मेरे प्रति लगाते हो तो मैं एक का पदम गुना दूंगा। और किसी ने कहा, कोई कह सकता है, सिर्फ शिव बाबा ने कहा कि मैं एक का पदम गुना तन मन धन मेरे प्रति लगाओ, मेरे श्रीमत के अनुसार लगाओ। अगर मैं इनके पास कर्म करता हूं, इनके फैक्ट्री में काम करता तो ये पगार देगा ना, तो वो कैसे देगा, है ना, किसके श्रीमत के, अगर शास्त्रों के अनुसार और किसी के अनुसार कुछ करते हो वो देंगे, किसके मत के अनुसार कर्म करते हैं, तो वो जिम्मेवार है। तब बाबा ने कहा बहुत सुंदर क्या दिया, वरदान दिया, बच्चे अमृत वेले इसको रिवाइज करो कि हिम्मत का एक कदम मुझे रखना है, कोई दोषी नहीं, किसी को कुछ नहीं कहना है, कुछ भी हो जाए ये याद रखो ये मेरे कर्मों का फल है, हंसते हंसते स्वीकार करो। और मेरे पास इतनी शक्ति है मैं सहन कर सकता हूं, समा सकता हूं, वर्णन भी नहीं करना, किसी को वर्णन करने से कुछ होने वाला नहीं, समा लो, शक्ति है। अगर कम लगती है तो खास प्लान बनाओ कि ये शक्ति जमा करना चाहिए, शांति की शक्ति जमा करना चाहिए। आप कहेंगे हम बहुत व्यस्त थे, बिजी थे, किसको कहेंगे, अपने तकदीर को कहना है ना, नहीं किया तो जमा नहीं किया है, तो इसलिए समय निकालना चाहिए। समय है, बहुत सारा समय इधर उधर घूमने में, इसी में हम व्यर्थ गवाते हैं। सिर्फ महसूस चाहिए, रियलाइज करना चाहिए अभी कौन सा समय है और मुझे क्या करना चाहिए। सिर्फ आप याद करेंगे तो आप इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। समय मिला, मुरली सुनी, लिखी, एक कांत में बैठ के पढ़ेंगे, समय मिला बाबा की चुपचाप जो सेवा मिले सेवा करेंगे, इधर उधर देखेंगे नहीं, कोई करता है नहीं करना है, मुझे करना है, मुझे जमा करना है, जो कर रहा हूं मैं मेरे लिए कर रहा हूं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बाबा से सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये दो तीन बातों का अगर ध्यान देखते हैं तो ये शांति की शक्ति है, ये हमें डबल लाइट बनाता है। बहुत जन्मों का जो प्रभाव है बुद्धि पर, मन पर, जिसको आप कहते हैं बहुत जन्मों के हिसाब किताब, तो उसको आप साफ कर सकते हैं। तो ये है योग अग्नि। लेकिन विधि जानना चाहिए, ऐसे बैठे रहो, ऐसे मनन चिंतन करो और कुछ नहीं, ये दोनों शक्तियां साथ साथ चलना चाहिए। तो अपने आप से बात करो तो मन विधि है, यहां से प्रश्न पूछते जाओ तो बुद्धि अपने आप जवाब देंगी। बहुत समय से मुरली सुनी में ज्ञान जमा हुआ है, बुद्धि से पूछते हो मेरा रूप क्या है, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, सामने साथ है। अगर उससे पूछो नहीं तो बुद्धि शांत हो जाती है, मन चलता आगे, फिर धीरे से कोई बात याद आ जाती है। तो ये एक जानना चाहिए इन दो शक्तियों को कैसे यूज करना चाहिए, किस समय यूज करना। देखो दोनों हाथ मेरे ही है, एक ही जैसे है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये हाथ कहां यूज करना चाहिए, ये हाथ कहां यूज करना चाहिए, उसका ज्ञान है ना। जहां ये हाथ करना यूज करना चाहिए वहां ये हाथ यूज करो तो चलेगा। मन का काम है, मन क्या करता है ये जानना चाहिए। बुद्धि क्या काम करती है, बुद्धि को कैसे ले चलना चाहिए, काम में लगाना चाहिए, इन दोनों को जानकर इनका उपयोग करना है। ये प्रयोग है। और इन दोनों शक्तियों को, तब बाबा रोज कहता है मन बुद्धि को एक को नहीं, नहीं तो गीता में कहा मन मनाभव मन एक ही को लगाओ बुद्धि, तो बुद्धि व्यर्थ भटकती है, दूसरे विचार आते हैं। ये दोनों शक्तियां वहां तक ले चलना है। और जितना सेकंड जोड़ के रखते हो, कैसे रखेंगे, ऐसे खड़ा करो तो खड़ा नहीं होगा, नीचे आ जाएगा। तो वहां कंपेयर करो, बाप कौन और मैं कौन। बाबा के पास सर्वशक्तियां है, अष्ट शक्तियां है, एक एक शक्ति को देखो। शिव बाबा पवित्रता का सागर है, तो मैं कौन, जैसे बाप ऐसा मैं भी था। कभी अपने बचपन के दिन याद करो, जब परम, उसको बाबा कहता है अनादि स्मृति को याद करो। यहां आने से पहले मैं कैसे था, वो संस्कार है हमारे अंदर, उसको जागृत करना चाहिए। तो इस प्रकार अगर रोज करते हो, रोज आधा घंटा चाहिए, बाबा ने कहा एक महीना समय दिया है कि बाप समान बनना है, और वरदान भी दिया है रोज अमृत वेले इस वरदान को याद करो, तो बाबा की मदद भी मिलेंगी। बाबा देखना चाहता है बाप समान, किस कोई देखे तो कहे भगवान का बच्चा है, ज्ञान सुनते हैं, योग भी करते हैं, समय पर गुस्सा भी करते हैं, तो कोई मानेगा, ज्ञान भी सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, समय पर कुछ ऊपर नीचे हो गया, गलत शब्द उपयोग करते हैं, कोई मानेगा, भगवान के बच्चे कहेंगे। तो कहां है, तो इसलिए कहा बाप देखना चाहता है कि बच्चों का चेहरा सदा हर्षित रहना चाहिए, बच्चों की चलन में दिखाई देना चाहिए बाप के श्रीमत कैसा है, कैसे चलते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप समान, बाप शिव बाबा कौन है, तो वैसे गुण बच्चों के अंदर आना चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा एक महीने का समय दिया, चेकिंग करो। और उसके लिए दो काम है, एक शांति की शक्ति जमा करनी है, इस विधि से तपस्या करनी है, और दूसरा अमृत वेले ये वरदान भी याद करो, बाबा ने मुझे कहा हिम्मत का एक कदम मुझे रखना है, तो हजार कदम मदद बाबा की मिलेगी। कर्म करते हुए मन के अंदर ज्ञान का चिंतन चले, सामने कोई मिला तो ज्ञान के वर्णन करो, उसको भी सुना, उसके अंदर और कुछ चिंतन चल रहा था तो एक मुरली के पॉइंट सुनाया तो उसके अंदर भी चिंतन चला, तो ये सेवा है, रूहानी सेवा है, साधारण है, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इस दो तीन बातों पर ध्यान रखेंगे तो अव्यक्त स्थिति बना सकते हैं। जब बाबा आएगा उस समय बिल्कुल शांति से बैठकर बाबा की शक्ति को ग्रहण कर सकते हैं। बाप आता है कुछ देने के लिए, लेकिन लेने वाला पात्र भी योग्य चाहिए ना। दो तीन दिन समय मिलता है, उस समय को ऐसे इधर उधर व्यर्थ बातों में व्यर्थ न गवाते हुए कुछ जमा करना है, और यही जमा किया हुआ सारे कल्प में काम में आएगा, यही हमारी अमानत है। इस ख्याल से अटेंशन, इसको बाबा ने कहा अलर्ट शब्द यूज किया है, ध्यान दे दो, बहुत जागृत रहो, ठीक है। ओम शांति।